कर्तव्य अर्थात भोजन आहार में ग्रहण करने योग्य है तथा सर्व रसों से समन्वित और सर्व व्यंजनों से सहित ऐसा आहार असविषण है वह कदाचित ग्रहण करने योग्य है, कदाचित अयोग्य है। इस न्याय से वर्णन करने पर एषणा समिति का व्याख्यान होता है। उस एषणा समिति का पालन कैसे करें सो बताते हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव तथा बल वीर्य को जानकर जैसे जिनमत में कही गई है ऐसी एषणा समिति का पालन करें। द्रव्य आहार आदि पदार्थ को जानकर क्षेत्र जांगल अनु रुक्ष स्निग्ध आदि क्षेत्र को जानकर काल शीत उष्ण वर्षा आदि को जानकर भाव आत्मा के परिणाम श्रद्धा उत्साह को जानकर तथा अपने शरीर के बल को जानकर एवं अपने वीर्य सहनन को जानकर साधु जिनागम में जैसा उसका वर्णन किया गया है उसी तरह से एषणा समिति का पालन करे। यदि द्रव्य क्षेत्र आदि की अपेक्षा न रखकर चाहे जैसा वर्तन करेगा तो शरीर में वात पित्त कफादि की उत्पत्ति हो जाएगी।
साधु को बहुत अच्छी बात समझाई, साधु आहार कैसा ले अपने शरीर के स्वास्थ्य को देखकर, अपने संयम को देखते हुए उसके लिए क्या आवश्यक क्या अनावश्यक देखते हुए, और द्रव्य क्षेत्र काल मौसम कैसा है क्या है उसका विचार कर आहार को ग्रहण करे। जैसा 32 कितने 46 दोष, वो 16 और ये 32 शेष 10 8 और 4, इस प्रकार 16 जो 46 जो दोष है वो आगमुक्त एक विधि है, उस विधि का लोप न करते हुए उसको भी देखते हुए अपने शरीर संयम वातावरण मौसम आदि को देखते हुए आहार ग्रहण करें। ऐसा यदि नहीं करते हैं तो उसका दुष्फल भी बता दिया कि वात पित्त आदि का प्रकोप होने पर साधु के संयम में बाधा आ सकती है। शरीर को बिगाड़ना नहीं है कि अपन मुनि बन गए तो बिल्कुल शरीर से निर्मोही है, इसलिए अद्वा तद्वा आहार ग्रहण करना, बहुत ही ज्यादा त्याग तपस्या करना और ये समझना कि मैं बहुत उच्च साधना कर रहा हूं। अगर अनसंट ऐसे शरीर के प्रति कुछ ज्यादा प्रेशर दे दिया तो शरीर साथ नहीं देगा, तो शरीर प्रकुपित हो जाएगा, वात से पित्त से या कफ से प्रकुपित होगा तो कंट्रोल में नहीं आएगा, तो संयम में बाधा आएगी, मन नहीं लगेगा, सामायिक आदि में मन नहीं लगेगा, स्वाध्याय में मन नहीं लगेगा, उपदेश में मन नहीं लगेगा, तत्व चर्चा में मन नहीं लगेगा, तो किसी में मन नहीं लगेगा। सारा डिपेंड शरीर स्वास्थ्य के ऊपर है, तो शरीर स्वास्थ्य को देख करके आहार ग्रहण करना ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस बात को, विवेकपूर्ण बात को समझा दिया कि साधु आहार कैसे लें।
ऐसे ऐसे वो क्या करते हैं, वो इंद्रिय विजय होने के लिए करेंगे तो क्या करेंगे, इंद्रिय विजय होने के लिए ऐसे जैसे आपने कहा था ना बहुत बहुत नीरस भोजन करते हैं, उनको आशा नहीं है इंद्रिय विजय होने के लिए, ऐसा ऐसा भी कर सकते हैं।
इंद्रिय विजय क्या चीज है पहले ये समझिए, रस परित्याग इंद्रिय विजय है क्या, कि नीरस भोजन कर लिया तो ये तप के कोटि में आएगा, पर इंद्रिय विजय किसका नाम, पहला ये ठहराव करो परिभाषा क्या है उसकी। तप को ही इंद्रिय विजय समझ रहे हैं क्या, रस परित्याग नीरस भोजन करना तप कहलाता है, तप तो करो, उत्तर गुण है उसको यथाशक्ति करो, शरीर को देखते हुए अभी जो समझाया इस विधि से करो, तो इंद्रिय विजय अलग बात है, तप अलग बात है। नीरस खाना तो तप के कोटि में आएगा, वो तो उत्तर गुण है, मूल गुण नहीं है। अपन ने नीरस नहीं ले लिया तो पांच इंद्रिय विजय जो हैं वो टूट गए हमारे, तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, मूल गुण ही छूट रहा है। इसलिए रोज नीरस ले लिया, तो रोज नीरस ले लिया तो शरीर भी प्रकोपित होगा ही होगा, वात पित्त कफ आदि क्यों होते हैं। अति नीरस भोजन करने से भी और अति रूक्ष आहार करने से भी शरीर में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। इसको अति तप भी नहीं देना, इस शरीर के माध्यम से अति तप भी नहीं करवाना और तप का लोभ भी नहीं करवाना। ऐसे इसको न अति न इति, बीच में ये स्वस्थ भी रहे, संयम के पालन में अनुकूल भी रहे, ऐसा देखते हुए इसको, इस गाड़ी को कैसे खींचना साधु को ही पता होना चाहिए। जैसा निर्देशन दिया है आगम में उसके अनुरूप उसको ले जाओ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बड़ा निकटतम बंधु है, मित्र है, ये सहयोग देता है हर समय। तो इंद्रिय विजय क्या है, इंद्रिय विजय की परिभाषा क्या है, पांचों इंद्रिय तो पांच है, उसकी विजय का मतलब क्या, क्या करना उसमें,
आसक्तिपन में, आसक्तिपन,
हाँ, विषयों में आसक्ति का न होना इंद्रिय विजय। आसक्ति का मतलब मूर्छा भाव, मूर्छा भाव का मतलब उनको रखने के भाव, अधीन नहीं होना, उसके वश में नहीं होना, उनका स्वामित्व धारण नहीं करना।
कोई चीज अच्छी बनी हो उसको ही ज्यादा लेने से लगना, कोई चीज अच्छी बनी हो उसको ही ज्यादा लेने से, वो लंपट था पूरा ऐसा भी।
वो तो उसमें दोष बता दिया, 46 दोष में वो अंगार दोष है, अंगार दोष में आएगा वो। अंगार यानी अति लोभ से किसी चीज को ज्यादा खाना, ज्यादा खाना, उसको खाने की इच्छा रखना और ज्यादा खाना अंगार दोष है, अंगार दोष लगता है। इंद्रिय विजय क्या है, विषयों से दूर रहना इंद्रिय विजय, विषयों का त्याग करना इंद्रिय विजय,
इच्छा कम करना इंद्रिय विजय होगा
नहीं, वो तप में आएगा,
वो तप में
आसक्ति,
क्योंकि इच्छा न रखना तप।
इंद्रिय विषयों को नहीं रखना,
नहीं रखना।
देखो अनुव्रतधारी इंद्रिय विजयी होते हैं क्या,
नहीं।
बोलो, अविरति कितने हैं, 12। बारह अविरतियों में पंचम गुण स्थान तक तो एक ही त्रस वृत्ति है, पंचम गुण स्थान में उनको वो नीरस भी खा ले तो भी इंद्रिय विजय नहीं है। क्यों कहा ऐसा, वहां पर अविरति है, पांच इंद्रिय और एक मन को वश में नहीं करता है पंचम गुणस्थान वाला भी, ऐसा क्यों, नीरस खा रहा है और फिर भी इंद्रिय विजय आ रही। नीरस खाना तो तप हो गया, उस दिन जो रस परिग्रह परित्याग किया वो तो उनके लिए तप हो गया, इंद्रिय विजय नहीं हुआ, वो हुआ मूल गुण के बिना उत्तर गुण पालन करना। नीरस खा रहा है, उत्तर गुण पालन कर रहा है श्रावक, पर संयम ग्रहण नहीं कर रहा है। जब तक जीवन में संयम नहीं आता, सकल संयम नहीं आता, इंद्रिय विजय नहीं कहलाता। तो इंद्रिय विजय के लिए, इंद्रिय विजय के लिए बाधक क्या है, तो इससे ये समझ में आता है कि पंचम गुण स्थानवर्ती तप करता हुआ भी, नीरस खाता हुआ भी संयमी नहीं है, इसलिए इंद्रिय विजयी नहीं है। जो संयमी होगा वही इंद्रिय विजयी होगा। संयम मूल गुण है और संयम धारण करने के लिए दसों प्रकार के इंद्रिय विषयों का त्याग करना पड़ेगा जो परिग्रह रूप है। 10 प्रकार के परिग्रह को त्याग करना ही इंद्रिय विजय है। फिर एक प्रश्न उठाओ इसमें, फिर द्रव्य संयमी यति, जो छठे गुणस्थान से पांचवें में या और नीचे के गुणस्थानों में आए हैं, उनके पास इंद्रिय विषय 10 परिग्रह ये तो है ही नहीं। पूर्णतः 10 परिग्रहों का उनको त्याग है। देखो सुनो बहुत अच्छा है, 10 प्रकार का परिग्रह त्याग है क्या? नहीं, तो त्याग है तो इंद्रिय विजय होना चाहिए। कहते हैं अवश्य इंद्रिय विजय है, परंतु द्रव्येंद्रिय विजय है, भावेंद्रिय विजय नहीं है। क्यों? 10 प्रकार का परिग्रह नहीं है तो द्रव्येंद्रिय विजय, उसके प्रति कोई आसक्त नहीं है। विषयों को रखना ये असंयम है, उसका स्वामित्व पाना ये असंयम है, और असंयम अवस्था में इंद्रिय विजय नहीं होता। तो वो रख रहा है क्या? नहीं, पंचम गुणस्थान वाला रख रहा है। एक वस्त्र आदि को भी रखता है तो 5 इंद्रिय विजय, 6 प्रकार का असंयम वहां है, असंयम है, इसलिए तत्संबंधी इंद्रिय विजय नहीं है। इंद्रिय विजय का तात्पर्य इंद्रिय विषयों का स्वामित्व का न होना और उसके बदले में संयम का होना, ये आवश्यक है। स्वामित्व रहेगा तो वस्तु को रखेगा, तो वस्तु रहेगा तो स्वामित्व भी रहेगा। जहां वस्तु है वहां स्वामित्व भी है, जहां वस्तु नहीं है वहां स्वामित्व भी नहीं है। जहां परिग्रह होगा, बहिरंग परिग्रह, वहां नियम से स्वामित्व होगा ही होगा उसका, वो राग पूर्वक ही रखा जाता है ना, तो इंद्रिय विषय हो गया वो। उसी इंद्रिय विषय को होने से असंयम आ गया, उसी असंयम के आने से इंद्रिय विजय नहीं कहा जाएगा। और फिर प्रश्न उठता है, फिर द्रव्य संयमी यति, जो बाह्य रूप से तो 10 प्रकार के परिग्रह का त्यागी होने से द्रव्य 28 मूल गुणों को सभी के सभी धारण करता है, 28 मूल गुण सब है उनके पास, इंद्रिय विषय नहीं है, यानी 10 परिग्रह का मालकियत को छोड़ दिया है, इंद्रिय विषय परिग्रह नहीं है, पर विषयों का अनुराग है क्या? नहीं है। किस प्रकार से है वो? अगले भाव में मुझे यही मिले और डबल मिले, तो विषय आशा वशाती, तो जो विषय है 10 परिग्रह हैं, उसके उसकी आशा के वश में नहीं रहना, ये आशा के वश में है। विषय से तो दूर है पर आशा के वश में है ये। कौन साधु? द्रव्य संयमी, द्रव्य संयमी साधु आशा के वश में है, इसलिए इंद्रिय विजय नहीं है। यानी कौन से इंद्रिय विजय नहीं है? भावेंद्रिय विजय नहीं है। भावों में आशा है, आशा कहां होती है? भावों में, आत्मा के भावों में आशा होती है। उस भाव को आशा के वश में कर दिया तो भावेंद्रिय विजय चला गया, और वस्तुतः कर्म निर्जरा का कारण भावेंद्रिय है। संवर और निर्जरा के लिए भावेंद्रियों का विजय होना आवश्यक है, और वो नहीं होता है द्रव्य संयमी को, भाव संयमी को ही होगा। फिर द्रव्येंद्रिय विजय है क्या? नहीं, वो है, क्योंकि द्रव्येंद्रिय के लिए जो वस्तु चाहिए वो वस्तु उनके पास नहीं है, तो द्रव्येंद्रिय विजय है। पर वस्तु के प्रति जो आशा नहीं रहनी चाहिए वो आशा है, इसलिए भावेंद्रिय विजय नहीं है। तो इंद्रिय विजय भी दो प्रकार का, द्रव्येंद्रिय विजय और भावेंद्रिय विजय। श्रावक इसमें बैठता नहीं, दोनों में नहीं बैठता, संयम पांचवा गुणस्थान वर्ती श्रावक, क्योंकि एक लंगोटी वस्त्र भी अगर ऐलक रूप में रहे तो इंद्रिय विषय ही है। उस विषय का त्याग करना और उस विषय की आशा को भी त्याग करना, वस्तु रहेगी तो विषय रहेगा, विषय रहेगी तो नियम से आशा भी रहेगी, उसका स्वामित्व रहेगा, उसके भाव रहेंगे, विकारी भाव वैभाविक भाव रहेंगे। तो यहां न तो द्रव्येंद्रिय विजय है और न ही भावेंद्रिय विजय। और दोनों प्रकार का इंद्रिय विजय नहीं होता है, इसलिए पंचम गुणस्थान में 11 अविरति हैं और एक विरति है त्रिसविरति। 24 थाना में आप पढ़ लो आगम के अनुसार वो लिखा हुआ है, पंचम गुणस्थान वर्ती जीवों को कितने असंयम होते हैं, चाहे वो कोई भी पद हो, दूसरी प्रतिमाधारी हो, दूसरी प्रतिमा से लेकर 11वीं प्रतिमा, उपचार महावृत्ति आरी का, इन सबको देखो पंचम गुणस्थान है क्या नहीं। आरी का गुणस्थान कौन सा? पांचवा। व्रत कौन से दिए जाते हैं? प्रतिमाएं दी जाती हैं कि महाव्रतों को? उपचार महाव्रतों को देते हैं। उपचार महाव्रतों को देते समय उनको क्या महाव्रत कह करके क्या वस्त्र को भी छुड़ाया जा रहा है? नहीं, वस्त्र सहित है। तो वस्त्र सहित महाव्रति कैसे, ये भी प्रश्न उठता है। तो उनको ये कहा, सज्जाति ज्ञापनार्थम तेषां महाव्रतानि भवन्ति, तासां महाव्रतानि भवन्ति, यानी उन आरिकाओं के सज्जाति को जताने के लिए, उसके विज्ञापन के लिए, उसको कहने के लिए, किसको कहने के लिए, उनके उनके उस स्त्री पर्याय में सर्वोत्कृष्टता को दर्शाना, ये सज्जाति का दर्शन। तो स्त्री पर्याय मात्र में सर्वोत्कृष्ट कौन है? तो कहते हैं आरिका। छुल्ली का वो तो प्रतिमाधारिणी है, आरिका वो तो उपचार महाव्रतधारिणी है। तो उससे आगे उनके व्रत नहीं होते, जैसे मुनि के साक्षात महाव्रत होते हैं, वैसे उनके उससे ज्यादा महाव्रत नहीं होते, इसलिए वो उपचार महाव्रत है। और देते समय जो मुनियों को दिया जाता है महाव्रत, उन्हीं महाव्रतों को दिया जाता है, लेकिन उपचरित करके, साक्षात करके नहीं। साक्षात करके यदि देंगे तो वस्त्र को भी छुड़ाना पड़ेगा, वस्त्र दे करके फिर भी महाव्रत का आरोपण करके दिया जा रहा है, तो ये ऐसा क्यों? इसलिए कि स्त्री पर्याय में अत्यंत उत्कृष्टतम संयम यदि है तो वह आरिका व्रत है। आरिका व्रत के पश्चात अब उनको कोई व्रत नहीं है। जैसे उनके आगे का व्रत कौन सा? मुनियों का महाव्रत। तो वो महाव्रत तो साक्षात महाव्रत, और आरिका का महाव्रत उपचार महाव्रत। तो इसमें उपचार किसका किया जा रहा है? उन्हीं महाव्रतों का किया जा रहा है, लेकिन उपचरित करके किया जा रहा है। उपचार क्यों करना पड़ रहा है? एक वस्त्र परिग्रह को वहां पर देना है और वो साक्षात महाव्रत प्रकट नहीं हो सकते वस्त्र के साथ में, इसलिए देना तो महाव्रतों को ही है, और उस जाति में यही महान है इसको कहने के लिए महाव्रत दिया जा रहा है। इसलिए उपचार महाव्रत को देते हुए भी आरिका के साथ उनकी पर्याय के अपेक्षा से वह संयम होते हुए भी, वो देश संयम ही तो है। यदि उपचार महाव्रत देने पर यदि वो महाव्रत ही है तो छठा गुणस्थान क्यों नहीं हुआ? मुनि हाँ वस्त्र के कारण से ही है ना, तो उस वस्त्र के कारण से कितनी अविरतियां आ रही हैं उसके साथ? 11 स्थावर जीव की हिंसा होगी क्या? स्थावर जीवों की रक्षा होगी क्या? नहीं, वो पांच प्रकार के स्थावर जीवों की हिंसा तो रहेगी। त्रस्त जीव की रक्षा होगी क्या? तो कहते हैं उसका हो, उसकी रक्षा होगी। तो त्रस्त रक्षा तो हो रही है, स्थावर की रक्षा कदापि नहीं हो सकती। पानी को छान करके वस्त्र धोया, तो छान करके किन जीवों की रक्षा की? त्रस्त जीवों की। तो ये उनका संयम है। आरिका का भी वही संयम है, त्रस्त रक्षा, और एक छुल्लिका का भी वही संयम है। आरिका के कितनी अविरतियां हैं ये प्रश्न उठा। वस्त्र होते हुए भी क्या आप सभी विरति मानेंगे? और यदि सभी विरति मानेंगे, एक भी अविरति नहीं रहेगा ऐसा मानेंगे, तो पूर्ण संयमी कहलाई। और यदि पूर्ण संयमी आरिका है तो छठा गुणस्थान हुआ। तो वस्त्र सहित भी यदि छठा गुणस्थान हो गया तो बहुत आसान हो जाएगा,
बाधा
आएगी। फिर उस छठे उस तो वस्त्र के साथ यदि महाव्रत संयम टिक सकता है और आरिका का छठा गुणस्थान हो सकता है, तो आरिका को वस्त्र सहित अवस्था में मोक्ष को भी मानना पड़ेगा, क्योंकि मोक्ष के कारण यही महाव्रत है, यही संयम है जो छठे गुणस्थान का है। और आरिका के संपूर्ण विरति होती है, यानी 12 अविरति में से कोई भी अविरति नहीं होती और पूर्णतः मुनिवत विरति होती है ये कहेंगे, तो मुनि के विरति में और इनके विरति में फर्क क्या करोगे? वस्त्र होते हुए भी अगर विरति सिद्ध हो गई तो मुनि के विरति में और इनकी विरति में क्या फर्क करोगे? कुछ भी फर्क नहीं है। तो यदि फर्क नहीं है तो छठा गुणस्थान भी होना पड़ेगा। तो छठा गुणस्थान भी हो गया, तो छठा गुणस्थान अगर हो गया तो फिर शुद्धोपयोग को भी होना पड़ेगा, शुक्ल ध्यान को भी होना पड़ेगा। जहां संयम है, व्यवहार संयम, वहां व्यवहार मोक्ष मार्ग है। पंचम गुणस्थान में व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं है, इसलिए आरिका के पास भी व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं है। अगर आरिका को छठा गुणस्थान हो गया तो व्यवहार मोक्ष मार्ग ही तो मानना ही पड़ेगा। और व्यवहार मोक्ष मार्ग यदि सवस्त्र अवस्था में हो गया तो सवस्त्र मुक्ति का, ध्यान सिद्धि का, श्रेणी चढ़ने का सबका प्रसंग आएगा। तो ये न्याय की कसौटी पर बैठता नहीं है। वस्त्र सहित शुक्ल ध्यान की सिद्धि, वस्त्र सहित संपूर्ण अविरतियों के त्याग की सिद्धि हो नहीं सकती। इसलिए आरिका अवस्था सवस्त्र अवस्था होने से पंचम गुणस्थान है और उनके साथ एक विरति है और बाकी सब अविरति है, इस कारण से पंचम गुणस्थान है ये कहना पड़ेगा। पंचम गुणस्थान में ऐसा तो नहीं कहा कि आरिका का पंचम गुणस्थान है और फिर भी उनके पास कितनी अविरतियां रहती हैं, इसका कथन अलग से तो किसी ने किया नहीं, आगम में कहीं भी नहीं मिलता। एक त्रस विरति ही होती है, यह तो प्रतिमाधारी की अपेक्षा से हो गया, आरिका की अपेक्षा से कितनी अविरतियां। और दोनों का है पंचम गुणस्थान, तो आरिका की कितनी अविरतियां गिनो, तो आगम आधार से गिनना पड़ेगा। तो आगम में कहीं अलग से नहीं कहा है आरिका को कि छुल्लक अलग प्रतिमाधारियों की अपेक्षा से ज्यादा अविरतियां वृत्तियां हो सकती है। प्रतिमाधारी को एक वृत्ति है, त्रस जीव वृत्ति, आरिका को जरा उससे ज्यादा वृत्ति है, ऐसा कहीं कथन?
सेम लब्धि स्थान भले ही मतलब चेंज हो सकते हैं,
हाँ संयम लब्धि स्थान चेंज है। लब्धि स्थान पंचम गुणस्थान में ही रहते हुए सबकी सीढ़ियां अलग अलग, आरिका के पीछे लब्धि स्थान, संयम का लब्धि स्थान छुल्लिका, ऐलक इत्यादि का है। और फिर जैसे जैसे नीचे प्रतिमाओं में जाएंगे उनकी लब्धि स्थान कम होती जाएगी, ऊपर ऊपर विशुद्धि बढ़ती है इसलिए लब्धि स्थान अधिक है, नीचे नीचे लब्धि विशुद्धि घटती जाती है इसलिए लब्धि स्थान भी घटता है। और जैसे जैसे लब्धि स्थान घटेंगे वैसे वैसे कर्म की निर्जरा भी कम होती जाएगी नीचे नीचे के प्रतिमाओं में, और आगे आगे की प्रतिमाओं में लब्धि स्थान बढ़ने से विशुद्धि बढ़ने से असंख्यात गुणित कर्म की निर्जरा भी गुण श्रेणी निर्जरा भी बढ़ती जाती है। दूसरी प्रतिमा के पास प्रतिमाधारी के पास जितनी गुण श्रेणी निर्जरा रहेगी उससे कहीं ज्यादा क्रमशः प्रतिमाओं के अनुसार गुण श्रेणी निर्जरा तो बढ़ती है। तो ये व्यवस्था है, ये आगम व्यवस्था ध्यान में रखते हुए ही आरिका को व्यवस्थित रूप से उनके सैद्धांतिक विषयों में उनको फिट करना पड़ेगा, वो कहाँ है क्या नहीं है। इतना तो निश्चित है कि वस्त्रधारी यदि कोई भी हो उनका पांचवें से ज्यादा गुणस्थान नहीं हो सकते, इतना तो निश्चित है कि इसमें भी कोई शंका आ सकती है। और यदि पंचम गुणस्थान तक वस्त्र आदि का संबंध है तो एक भी इंद्रिय विजय नहीं रहे, क्योंकि इंद्रिय विषय होते हुए इंद्रिय विजय होना संभव नहीं है। हाँ, नीरस खाना संभव है नीरस खाना संभव है, नीरस खा रहे हैं इसका अर्थ इंद्रिय विजय हूं ऐसा नहीं। तो क्या रसनिंद्री को ही केवल जीतना है क्या? पांचों इंद्रिय के विषयों को जीतना है, और वस्त्र ये पांचों इंद्रियों का विषय है। घटाना पड़ेगा, घटा है ना, स्पर्शनेन्द्रिय विषय है, साक्षात है। रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय बिगड़ गई तो रसनेन्द्रिय भी बिगड़ जाती है, उसमें बदबू आने लगी वस्त्र से, तो बदबू आते ही व्यक्ति उस बदबू के कारण से थूक के आ जाता है तो दोनों काम नहीं दे रहे थूकता भी है क्योंकि मुंह भी खराब होता है ग्राणेन्द्रिय के कारण, तो विषय तो जा रहा है ना। वो दुर्गंध सुगंध का आधारभूत वस्त्र निमित्त बन गया और उससे दुर्गंधी आने से हमें थूकना भी पड़ा, तो रसनेन्द्रिय को भी अच्छा नहीं लगा, ग्राणेन्द्रिय को भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए हमने थूक दिया। वस्त्र के कारण से ये हो रहा है। कर्णेन्द्रिय का भी विषय बनेगा,
लोग बोलेंगे अच्छा बुरा।
हाँ? नहीं, साड़ी ऐसा ही होना चाहिए, कैसा लाऊं साड़ी, आरिका को पूछेंगे तो ऐसा ऐसा होना चाहिए, तो ऐसा ही क्यों तो ऐसा है, ऐसा ही चाहिए पड़ता अपने को, चाहे वो साड़ी लट्ठे का मंगवा दो या उससे कुछ वो मंगवा दो। हाँ, लेकिन विषय वस्तु तो विषय वस्तु है, उसको मांगना ही पड़ता है, उसकी याचना करनी ही पड़ती है, ऐसा नहीं होना और ऐसा होना, राग द्वेष तो हो ही रहा है उसमें।
चेदर की औरत ने लाया,
नहीं आरिका ऐसा नहीं करेगी, वो तो प्रतिमाधारी का विषय है, आरिका के अंदर घटित कर रहे हैं। आरिका का पंचम गुणस्थान है, इंद्रिय विजय नहीं है, क्यों नहीं है इसको घटित कर रहे हैं। वस्त्र एक वस्त्र के कारण से भी, अगर वो एक वस्त्र केवल स्पर्शनेन्द्रिय विजय का न होना ऐसा ही यदि है तो आरिका के चार इंद्रिय विजय माननी पड़ेगी, कितने, पांच, पांच अग्रतियां नहीं रहेंगी, हाँ ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। इंद्रिय विषय में से एक भी अगर आ गया, यानी दस परिग्रह में से एक भी परिग्रह आ गया, तो पांच इंद्रिय विजय पाना संभव
नहीं।
कोई भी आ गया तो, केवल वस्त्र ही नहीं, कोई भी आ गया तो इंद्रिय विजय नहीं हो सकता। इसलिए दिगंबरत्व ही मोक्ष मार्ग है, दिगंबरत्व में ही संयम है, दिगंबरत्व में ही इंद्रिय विजय है, दिगंबरत्व में ही महाव्रत फेंक सकते हैं, दिगंबरत्व में ही ध्यान की सिद्धि हो सकती है, दिगंबर ही श्रेणी चढ़ता है, दिगंबर ही केवल ज्ञान पाता है, और दिगंबर व्यक्ति ही मोक्ष जाता है। नभो ही मोक्ष मग्गो, एक ही शब्द में कह दिया कुंद कुंद आचार्य ने, नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। ये नग्नता केवल बहिरंग से नहीं लेना, अंतरंग बहिरंग उभय रूप नग्नता ही मोक्ष मार्ग है, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। नहीं तो आरिका को उपचार महाव्रति ठहरा करके मुनि के ही व्रत दिए जाते हैं, इसलिए भी वहां महाव्रति, इसलिए उनकी पूजा भी करो, वंदना भी करो, अर्घ्य भी चढ़ाओ, आठ द्रव्य, तो पंचम गुणस्थान पूजनी हो जाएगा। उपचार महाव्रत 11 अविरति और एक विरति, तो अविरति पूजनी हो जाएगा ना। असंयम की पूजा नहीं बताई है जैन धर्म में, असंजनम न वंदे, असंयम की वंदना को भी मना किया, यानी नमोस्तु नहीं बोल सकते। आरिका को इच्छाकार शब्द है, नमोस्तु क्यों नहीं है उपचार महाव्रत होते हुए भी? इच्छाकार कहा, कुंद कुंद स्वामी ने तो प्राचीन शब्द उनका है इच्छाकार, कालांतर में उस इच्छाकार के अर्थ में ही वंदामी शब्द को उपयोग में ले लिया, ये कालांतर में हुआ, कालांतर में हुआ, अन्य आचार्यों ने कहा, पर कुंद कुंद स्वामी ने ये नहीं कहा कि वंदामी, उनका शब्द है इच्छाकार, जो दर्शन ज्ञान से सहित है और वस्त्र आदि परिग्रह से युक्त है, उनको इच्छाकार बोलना, ये कहा। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से युक्त है और वस्त्र आदि से सहित है, उनको क्या बोलना? तो कहती इच्छाकार बोलना। और जो सम्यक दर्शन ज्ञान से भी रहित हैं और वस्त्र से भी सहित हैं, जो सम्यक्त्व और ज्ञान से भी रहित हैं और वस्त्र से भी सहित हैं, तो उनके पास न तो सम्यक दर्शन है न ज्ञान है, और वस्त्र होने से संयम भी नहीं है, तो दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों नहीं है, तो उनको क्या बोलना? तो कुंद कुंद स्वामी ने उसकी चर्चा ही नहीं की, उन्होंने दो ही शब्द में निपटा दिया। मुनि को बोलना हो तो नमोस्तु बोलो, पंच परमिष्ठी नव देवता जिनवाणी दिगंबर गुरु सच्चे देव अरहंत भगवान सिद्ध भगवान, इनको जो बोलते हो उसको नमोस्तु ऐसा बोलो। और यदि सम्यक दर्शन ज्ञान दोनों को धारण करते हुए किंचित वस्त्र रखते हैं और किंचित परिग्रह का त्याग भी किया है, तो उनको इच्छाकार बोलो, ये कहा। फिर जिनके पास न सम्यक दर्शन है न ज्ञान है न वस्त्र आदि का त्याग है, उनके लिए क्या बोलना? तो उन ऐसे जीव तो अनंत अनंत हैं संसार में, सब रत्नत्रय से रहित है ना, एकेंद्री से लेकर संगी पंचेंद्री तक। ऐसे मिथ्यात्व गुणस्थान में रहने वाले जीवों को जो दर्शन ज्ञान चारित्र से रहित हैं, उनको क्या बोलना? कुंद कुंद स्वामी ने शब्द ही नहीं कहा उसको, उसको कुछ नहीं भी कहो तो चलेगा, और कुछ कहना भी चाहते हो तो इतना कहो कि तुम मिथ्यात्व का विजीव हो जाओ, मिथ्यात्व को जीतो, जैन बनो, मिथ्यात्व को जीत कर जैन बनो, तो जय जिनेंद्र बोलो। ये बाद की बात, हम लोगों की व्यवस्था है। कुंद कुंद स्वामी कुछ भी नहीं कर रहे जय जिनेंद्र बोलो, ये विधान नहीं कर रहे, ये तो हम लोगों की व्यवस्था है
ना, पूजनीय ना। हाँ,
ये आदर की दृष्टिकोण से जब हम परस्पर में मिलते हैं तो आदर की दृष्टिकोण से आपको क्या बोले?
जय जय।
तो उसको जय जिनेन्द्र बोलो। जय जिनेन्द्र का क्या तात्पर्य, जिनेन्द्र भगवान ने जैसे मिथ्यात्व को जीता, असंयम को जीता, प्रमाद को जीता, कषाय को जीता, योग को जीता और जिन बन गए, जयवंत हो गए। जैसे जिनेन्द्र भगवान जयवंत हो गए वैसे आप भी इनको जीतो, जिनेन्द्र भगवान के समान तुम भी जयवंत बनो यानी विजयी बनो। जय जिनेन्द्र ऐसा कहना है, जय जिनेन्द्र का अर्थ ऐसा है। जय जिनेन्द्र का अर्थ ये नहीं जिनेन्द्र भगवान की जय हो, अरे वो तो जयवंत हो चुके हैं, उनकी क्या जय बोल रहे हैं। जो जयवंत हो चुका है उनको कहोगे जय जिनेन्द्र, अरहंत भगवान को उनके सामने खड़े जय जिनेन्द्र। जिनको जीतना है ये सब कुछ विकारी भाव कर्म उनको बोलो, तो प्रथम गुणस्थान वर्ती को बोलो, दूसरे तीसरे गुणस्थान तक के लोगों को जय जिनेन्द्र बोलो, और चौथे गुणस्थान वर्ती यदि है तो भी जय जिनेन्द्र बोलो, और यदि पंचम गुणस्थान वर्ती है तो उनको इच्छाकार बोलो, चाहे आरिका हो, छुल्लक हो, प्रतिमाधारी हो, सबको इच्छाकार। ये प्राचीन शब्द है। हाँ मतलब प्राचीन शब्द के अनुसार हमने घटा दिया। कुंद स्वामी के दृष्टिकोण से ये कथन आता है, सम्यक्तु से जो सहित है और ज्ञान से भी सहित है किंतु वस्त्र से सहित है, तो उनको इच्छाकार बोलो। और ऐसे दो प्रकार के हैं, ज्ञान से भी सहित हो, सम्यक्त से भी सहित हो और वस्त्र से भी सहित हो, तो ऐसे दो हैं, चौथे गुणस्थान वर्ती और पंचम गुणस्थान वर्ती। पंचम गुणस्थान वर्ती ये तो एक सीढ़ी ऊपर वाला गुणस्थान की अपेक्षा, तो इनको क्या बोलना, इनको भी इच्छाकार शब्द है। फिर कुंद की दृष्टि में चौथे गुणस्थान वर्ती को क्या बोलना, तो वही बैठेगा ना, वस्त्र से सहित है का मतलब दोनों वस्त्र से सहित है ये, तो शब्द तो वही लागू होगा, शब्द तो वही आएगा। अब एक देश परिग्रह को त्याग किया इसलिए पंचम गुणस्थान हो गया, पर पंचम गुणस्थान होने के बाद भी क्या वस्त्र से रहित हो गए, नहीं, तो इनको क्या बोलना। कुंद स्वामी कहते हैं इच्छाकार, इच्छाकार। अब ये बाद की व्यवस्था है कि दसवें प्रतिमाधारी को इच्छाकार बोलो, ग्यारहवें को इच्छाकार बोलो, ये बाद में हमने विभाजन ज्यादा किया थोड़ा उसको और व्यवस्थित करने के लिए, यानी ये चौथे गुणस्थान वाले, ये पंचम गुणस्थान वाले, इच्छाकार एक ही शब्द रहेगा तो फर्क नहीं रहेगा, अंतर नहीं दिखाई देगा, इसलिए इनको जय जिनेन्द्र बोल दिया और पंचम गुणस्थान वर्ती को वंदना, वंदामी, इच्छामी इन शब्दों को लागू कर दिया, थोड़ा और व्यवस्थित कर दिया उसको। कुंद स्वामी ने सामान्य से निपटा दिया था, बाद के लोगों ने उसको और विश्लेषित करके व्यवस्थित करके रख दिया। तो प्राचीन पद्धति और अर्वाचीन पद्धति, इन दोनों पद्धतियों में फर्क तो आ गया, और मूल पद्धति प्राचीन पद्धति से भी आप अगर चलते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है। अब चतुर्थ गुणस्थान वर्ती को इच्छाकार करते हैं तो आपत्ति है क्या, फर्क क्या है, दोनों ही वस्त्रधारी है, कुछ भी बोलो आप, सिर्फ नमोस्तु नहीं बोलो सिर्फ नमोस्तु नहीं बोलना, नमोस्तु बोलना गलत है, इच्छाकार बोलो, क्या बिगड़ता है। चौथे गुणस्थान वर्ती को उसमें भी आपको विकल्प होगा कि उनसे तो हम बड़े हैं और उनको भी इच्छाकार बोल रहे हैं और हमको भी इच्छाकार बोल रहे हैं ऐसा कहोगी क्या? हमारे तो, हमारी तो 7 प्रतिमाएं, 2 प्रतिमाएं है, हमको इच्छा करो। तो वस्तुतः पहली प्रतिमा से 9वीं प्रतिमा तक वंदना शब्द का उपयोग किया। वंदना, वंदना यानी नमोस्तु नहीं, उसका अर्थ भी इच्छा का ही है, पर शब्द बदल दिया। इच्छाकार के अर्थ में ही रहेगा वो। इच्छाकार का मतलब क्या? हे प्रतिमाधारी, तुम जैसे संयम का अभ्यास कर रहे हो, मुनिव्रत का, मुनियों के महाव्रतों का अभ्यास पंचम गुणस्थान में जाकर तालीम कर रहे हो, हाँ, वैसे मैं भी उसी संयम की इच्छा रखता हूं, पर आप जैसे तालीम नहीं कर पा रहा हूं। मैं तालीम की इच्छा नहीं करता, पंचम गुण स्थान में जाने की मेरी इच्छा नहीं है, मुझे भी संयम की इच्छा है, और आपको जिसकी इच्छा है उसी की इच्छा मुझे भी है, इसलिए इच्छाकार। आपको जिसकी इच्छा है, पंचम गुण स्थान वर्ती आप हैं, वही इच्छा मुझे भी है। क्या मुझे पंचम गुण स्थान की इच्छा है? नहीं। क्या ऐसा नियम है क्या, पंचम गुण स्थान में ही आप जैसे पहले तालीम करूं और फिर बाद में मुनि बनूं? जरूरी नहीं। इसलिए इच्छाकार का अर्थ ये नहीं है कि मैं, आप प्रतिमाधारी हैं और मैं भी प्रतिमा की इच्छा करता हूं, ऐसा अर्थ नहीं है। तो परिग्रह की इच्छा कर रहा है वो, वहां पर भी परिग्रह, वृत तो आएगा साथ में, लेकिन परिग्रह को भी तो रखना पड़ेगा ना, पंचम गुण स्थान में जाएंगे तो कहते हैं परिग्रह मत रखो, डायरेक्ट की इच्छा करो, संयम की इच्छा। और प्रतिमाधारी जो प्रतिमा ले चुका है, प्रतिमा लेने की इच्छा नहीं रहती, हाँ, ये मुनि बनने की ही इच्छा रहती है, मजबूरी है कि मैं प्रतिमाधारी बन गया। जहां मेरी इच्छा की पूर्ति नहीं होती, उस समय मेरे लिए पंचम गुण स्थान के व्रत जीवन में आते हैं, मजबूरी से आते हैं, ये मजबूरी हो जाती है। हाँ, समान अर्थ है। इच्छा में ये क्रियापद हो गया, मैं इच्छा करता हूं, उसका इतना डिटेल अर्थ है। इच्छा में इच्छति इच्छतः इच्छन्ति, इच्छसि इच्छतः इच्छामि इच्छा व इच्छामि, ये क्रियापद के रूप चल गए। तो उसमें उत्तम पुरुष का एक वचन इच्छामि होता, क्रियापद है ये, इच्छामि इच्छा वह इच्छामि, इच्छामि यानी एक वचन हो गया, इच्छा वह द्विवचन हो गया, और इच्छा वह बहुवचन हो गया। इच्छा करता हूं, हम दोनों इच्छा करते हैं, हम सब इच्छा करते हैं, ऐसा हो गया। और इच्छाकार का मतलब हम भी, जैसे नमस्कार है, कार शब्द जुड़ा, नमः कार नमस्कार, वो नमः वाला कार है, ये इच्छा वाला कार है। कार गाड़ी अलग अलग है। वो नमः वाला कार है और ये इच्छा वाला कार है। पंचम गुणस्थान में सब लोग इच्छा ही इच्छा करते रहते हैं, चौथे गुणस्थान वाले भी इच्छा इच्छा ही करते हैं, किसकी इच्छा? संयम की इच्छा करते हैं, लेकिन ले नहीं पा रहे। और ये पंचम गुणस्थान वाले संयम की इच्छा तो कर रहे हैं, लेकिन वो ले नहीं पा रहे, इसलिए लेने से पहले, लेने के बाद उसका निर्वाह करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल करना शुरू कर दिया, अभ्यास करना शुरू कर दिया। पंचम गुणस्थान तालीम का गुणस्थान, अभ्यास का गुणस्थान है, मैदान नहीं है ये तालीम है। पहलवान पहले मैदान में जाकर कुश्ती खेलने की बजाय वो अखाड़े में प्रैक्टिस करता है, वो अखाड़ा पंचम गुणस्थान है, और जो पहलवान बनना चाहता है वो तालीम बीम भी नहीं गया है अभी, वो चौथा गुणस्थान वाला, वो अपने ऊपर देखता है कि मैं क्या कर सकता हूं, क्या मैं डायरेक्ट पहलवान बन सकता हूं, यदि बन सकता हूं तो बन सकता हूं, बनो ना, सीधा ही मैदान में जाओ और खेलो कुश्ती, कौन मना करता, जीत गए जीत गए। अगर ऐसा मतलब किसी पहलवान से डायरेक्ट जाकर के चतुर्थ गुणस्थान से छठे गुणस्थान के मैदान में डायरेक्ट जाकर के हम संयम धारण करने की योग्यता अपने पास नहीं रखते हैं तो वो तालीम में जाता है। पंचम गुणस्थान तालीम है, छठा गुणस्थान मैदान है, और चौथा गुणस्थान न मैदान है न तालीम है, पर हर व्यक्ति मैदान में जाने की ही इच्छा करता है, चाहे पंचम गुणस्थान वर्ती हो चाहे चौथा गुणस्थान वर्ती हो, हर व्यक्ति मैदान में ही जाने की इच्छा रखता है। इसलिए इच्छाकार शब्द को कुंद कुंद स्वामी ने कहा, चाहे वो चौथे गुणस्थान वाला हो चाहे पंचम गुणस्थान वाला हो, इच्छाकार, नमस्कार नहीं इच्छाकार, मैं इच्छाकार वाला हूं, वो भी कहता मैं भी इच्छाकार वाला हूं। किसकी इच्छाकार वाले हो? संयम की इच्छाकार वाले हैं हम, और संयम लेने के बाद फिर हम नमस्कार वाले हैं। संयम लेने के बाद, छठे गुणस्थान का संयम लेने के बाद, फिर सभी जीव आपको नमस्कार कहेंगे और आप नमस्कार वाले हैं। खुद भी किसी पंच परमिष्टि आदि को नमन आदि करेंगे तो उस समय क्या बोलेंगे? छठे गुणस्थान वर्ती पंच परमिष्टियों को नमन करते समय क्या बोलेंगे? नमस्ते ही बोलेंगे, तो वो नमस्कार वाले। और आप सभी लोग परस्पर में जब बोलते हैं नमस्तु नहीं बोलते, आप इच्छा शब्द का उपयोग करते हैं, तो आप इच्छाकार वाले हैं, हम नमस्कार वाले हैं और आप इच्छाकार वाले हैं। हम जब भी किसी को करेंगे तो नमस्तु ही कहेंगे, और आप लोगों को तो कुछ कहने का संबंध ही नहीं आता। यानी आपको क्या कहें हम? आप नमस्तु कर रहे हैं और हम क्या कहें आपके को? आशीर्वाद, आशीर्वाद किस प्रकार से दे उसको भी कहा, तो उनको क्या कहा? देखो सुनो सुनो, मुनियों को श्रावक के लिए क्या कहना चाहिए? वो तो नमस्तु कर रहा है, नमस्तु के बाद उनके लिए क्या कहना चाहिए? तो कहें सद्धर्म वृद्धि रस्तु। अब सद्धर्म आ गया, सद्धर्म क्या है? ये रत्नत्र ही सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र ही धर्म है, सद्धर्म है, कल्याणकारी है, आत्मकल्याण का वही मोक्ष मार्ग है। वो मोक्ष मार्ग आपको भी प्राप्त हो, मोक्ष मार्ग को नमन किया है ना आपने, हमारे पास है मोक्ष मार्ग, तो इस धर्म को, अगर मोक्ष मार्ग को रत्नत्रय स्वरूप रत्नत्रय को नमस्कार किया, इस धर्म को नमस्कार किया, तो उसी धर्म का लाभ हो या आशीर्वाद दिया? आपने उसी गुणों के अनुराग से नमस्कार किया तो यही गुण आपको प्राप्त हो। सद्धर्म रत्नत्रय स्वरूप सद्धर्म त्वदीयं प्रति अस्तु, ऐसा उनको आशीर्वाद दे दिया। हाँ, सद्धर्म वृद्धि रस्तु, सद्धर्म मिले भी और उसमें वृद्धि भी हो, सद्धर्म प्राप्त भी हो और उसका वृद्धि, उसकी वृद्धि भी हो। अच्छा अब सुनो, अब देखो, एक पंचम गुणस्थान वर्ती आए प्रतिमाधारी, उन्होंने नमस्कार किया, ये सद्धर्म वृद्धि रस्तु किसके लिए? हाँ, मिथ्या दृष्टि श्रावक सबके लिए है ये सद्धर्म वृद्धि रस्तु, सद्धर्म वृद्धि रस्तु सबके लिए, सद्धर्म यानी सम्यक तो रूप धर्म, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये धर्म है, तीनों रत्न है, इन रत्नों का लाभ हो। अब मिथ्या दृष्टि जीव के लिए क्या आशीर्वाद देंगे? पंचम गुण, पहले गुणस्थान वर्ती, उनको भी वही धर्म लाभ हो, तो आपको रत्नत्रय धर्म का लाभ हो। और चौथे गुणस्थान वर्ती को सद्धर्म लाभ हो, थोड़ा सा चेंज कर दी। और प्रतिमाधारी को समाधि वृद्धि रस्तु, प्रतिमाधारी अगर बोल रहा है, आरिकाएं बोलती है नमस्तु, प्रतिमाधारी बोलते हैं तो समाधि वृद्धि रस्तु, क्योंकि आप तो संयम की इच्छा से पंचम गुणस्थान में भी आए हैं और आप कुछ ही समय में संयम धारण करने वाले हैं, रत्नत्रय धारण करने वाले हैं। इसलिए जब आपको रत्नत्रय प्राप्त हो जाएगा, आपकी भावना की पूर्ति होने वाली है, तो उस समय आपकी समाधि अच्छी तरह से हो, ऐसा हम आशीर्वाद देते हैं। अभी तो पंचम गुणस्थान है, समाधि पंडित मरण हो, मुनि बनकर आप पंडित मरण करें, समाधि वृद्धि रस्तु, समाधि की साधना में आपको सफलता मिले, ये आशीर्वाद दिया। और यदि पंचम गुण स्थान में ही मरण कर रहे हैं तो भी वही कहेंगे, हाँ, समाधि वृद्धि रस्तु, पंचम गुण स्थान में भी समाधि है और छठे गुण स्थान में भी समाधि है, पर चौथे गुण स्थान में समाधि नहीं है, इसलिए उसको आशीर्वाद ऐसे नहीं दी, ऐसा नहीं दिया जाता कि समाधि वृद्धि रस्तु। हाँ, और श्रावक क्या करते हैं, अपने घर का कोई भी व्यक्ति जो प्रतिमान धारी नहीं है, ठीक ढंग से मंदिर तक नहीं गया है जीवन में, कुछ व्रत नहीं, संयम नहीं, सिर्फ देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा है, दान देता है, षटकर्म पालन करता है, तो ये बात अलग है। षटकर्म पालन करने वाला, देव पूजा, गुरु पास्ति, स्वाध्याय, संयम तो नहीं है, संयम जरा भी नहीं है, संयम ये तो पंचम गुणस्थान वर्ती के लिए हो गया, संयम नहीं है, दान कर सकता है, तप नहीं है, तो अविरत सम्यक दृष्टि इतना ही करता है, देव पूजा, गुरु पास्ति, स्वाध्याय और दान, दान, तप नहीं करता, तप नहीं है, तप और संयम आ गया तो पंचम गुणस्थान हो जाएगा, संकल्प पूर्वक आया तो पंचम गुणस्थान, अगर प्रैक्टिस कर रहा हो तो वो भी तालीम वाला ही है, वो भी तालीम वाला है, पंचम गुणस्थान का तालीम चौथे में और छठे गुणस्थान का तालीम पंचम में, तो चौथे गुणस्थान वर्ती को ऐसा नहीं कहा कि उसको समाधि वृद्धि रस्तु कहो, नहीं, उसका संकल्प नहीं है तो हम कैसे कहेंगे समाधि वृद्धि रस्तु, संकल्प नहीं था और वहीं पर उनका मरण हो गया, तो अविरत सम्यक्तों में मरण हुआ तो समाधि मरण हुआ क्या? समाधि मरण नहीं हुआ तो हम क्यों दें आशीर्वाद समाधि मरण का? चौथे गुणस्थान में, चौथे गुणस्थान में समाधि मरण है ही नहीं, जहां दसों परिग्रह हैं, पूर्ण असयम है, 12 प्रकार के अग्रतियां हैं, वहां समाधि मरण कैसे? समाधि का मतलब वहां संयम होना, सम्यक्त्व के साथ और ज्ञान के साथ कुछ ना कुछ संयम होना, संकल्प के साथ होना, और संकल्प के साथ एक देश परिग्रह, 10 परिग्रह में से सभी एक एक देश छोड़ते गए तो त्रस अविरति आ जाएगी और 11 अविरतियां रह जाएगी, तो इनको कहते हैं समाधि वृद्धि रस्तु। आपका बाल पंडित मरण हो सकता है, चौथे गुणस्थान में बाल मरण है, बाल मरण को हम समाधि वृद्धि रस्तु नहीं कहेंगे, बाल पंडित मरण वाले को समाधि वृद्धि रस्तु कहेंगे, जो संकल्प पूर्वक प्रतिमाधारी बना है या आरिका है, आरिका व्रत है, तो उन सबको समाधि वृद्धि रस्तु आशीर्वाद है। आर्यिका को उपचार महाव्रत होने से यदि महाव्रती है तो मुनि और आर्यिका मिलने पर दोनों को परस्पर में वो करना चाहिए व्यवहार, नमोस्तु का व्यवहार तो होता है क्या ऐसा? ये तो कहीं भी नहीं होता। परंतु अज्ञानता की बात यह है, विवेकहीनता की बात यह है कि आर्यिका की पूजा जरूर हो रही है, आज के जमाने में हो रही, पहला नहीं होती थी। और पूजा करते समय नहीं पता कि क्या बोल करके पूजा करते हैं, जब चल जल चढ़ाएंगे तो आर्यिका को चढ़ा रहे हैं, तो आर्यिका के पास कौन सा संयम है, देश संयम है या सकल संयम? देश संयम। तो देश संयम से जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरुपामिति स्वा कहेंगे आप मंत्र में, तो ऐसा कहेंगे। तो जन्म जरा मृत्यु का विनाशक सकल संयम है क्या देश संयम? सकल संयम। देश संयम जन्म जरा मृत्यु का विनाशक हो सकता है क्या? परिग्रह सहित निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है क्या? जन्म मरण से मुक्त होने का मतलब ये होता है कि मोक्ष पाना। क्या वो पंचम गुण स्थान से मोक्ष, उस संयम से मोक्ष होता है क्या? तो फिर जल चढ़ाते समय क्या बोलेंगे आर्यिका? और जो बोल रहे हैं वो गलत होगा कि नहीं होगा? मतलब न्याय है, इस न्याय के अनुसार चलेंगे तो व्यवस्थित चलेगा वो। और अज्ञान से चलेंगे तो अज्ञान के अंदर तो अन्याय ही होता है, न्याय नहीं रहता वहां।
स्ववचन बाधित हो जाएगा।
हाँ, स्ववचन बाधित हो, आचरण सब गलत होगा। इतने शतमानों वर्ष व्यतीत हो गए, किसी भी आचार्यों ने आर्यिका की पूजा करो ऐसा नहीं लिखा, यहां तक कि नमोस्तु भी करो ये भी नहीं लिखा, फिर पूजा कैसे? जिसको हम नमोस्तु बोलते हैं वो पूजा के योग्य भी है। आठ द्रव्यों से पूजा, मंगल द्रव्यों से पूजा की जाती है, क्योंकि जिसको हम, जिन गुणों को नमोस्तु बोल रहे हैं वो गुण मंगलदायी है, उनमें मंगलपना है। चार ही मंगल है ना, चार ही मंगल है, तो चार मंगलों की हम पूजा करते हैं वो गुण मंगल है। जहां पूर्णतः परिग्रह हट गया, परिग्रह पाप चला गया, वहां मंगलपना आ गया, तो ये व्यवहार मंगल है, ये व्यवहार मंगल। व्यवहार संयम व्यवहार मंगल, निश्चय संयम निश्चय मंगल। वस्तुतः जीवन का मूल लक्ष्य होता है हमें निश्चय को पाना है, और व्यवहार उसका साधन होने से उसको अपनाना पड़ता है, उसको हे नहीं समझा जाएगा। व्यवहार मंगल हे थोड़ी है, वही निश्चय मंगल को देने वाला है, दाता है वो। उस दाता को ही हटा दिया तो फिर कौन देगा निश्चय संयम को? लुप्त हो, उस निश्चय संयम हाथ लगेगा ही नहीं, यानी शुद्धों की ओर, यानी निश्चय रत्नत्रय, यानी निश्चय मोक्ष मार्ग। शुद्धोपयोग कहो, निश्चय मोक्ष मार्ग कहो, उपेक्षा संयम कहो, निश्चय संयम कहो, उसके बहुत सारे नाम हैं। वो निश्चय मोक्ष मार्ग हाथ लगने के लिए व्यवहार मोक्ष मार्ग चाहिए, और व्यवहार मोक्ष मार्ग तो मुनि के पास ही होता है, नीचे के गुणस्थानों में किसी भी साधक के पास नहीं होता। तो नीचे मंगलपना है क्या? व्यवहार संयम है क्या वहां?
नहीं,
पंचम गुणस्थान में व्यवहार संयम नहीं। व्यवहार संयम को ग्रहण करने की इच्छा रखते हुए व्यवहार संयम की ओर बढ़ रहे हैं, वो व्यवहार संयम ही नहीं, कवर कर रहे हैं। अभी तो एक त्रिसविरति आई है, अभी तो 11 अविरति को हटाने का अभ्यास चल रहा है, तालीम चल रहा है। तो तालीम में ही आप बख्शिश देंगे तो पहलवान को? मैदान में लड़े तो
बहुत जनों को
मैदान में लड़े तो बख्शिश मिलता है, आप तालीम वाले को ही बख्शिश देने लगे। तो मैदान में बख्शिश देने के लिए जाने की क्या जरूरत है, ताले में ही पहुंचो ना बख्शिश देने के लिए। वहां भी दो पहलवान लड़ रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, और अभ्यास के काल में गिरते भी हैं और उठते भी हैं। तो उसमें जो गिर गए उनको नहीं देना, जो जीत गए उनको देना। तो तालीम वाले को जैसा बख्शीश नहीं मिलता, वैसे पंचम गुणस्थान वर्ती को पूजा नहीं मिलती। पूजा एक बख्शीश है। पूजा एक बख्शीश की वस्तु है, नमोस्तु एक बख्शीश की वस्तु है। पूजा और नमोस्तु का मतलब होता है आपके गुण मेरे लिए इच्छा का इच्छा के योग्य है, ग्रहण करने के योग्य है, उपाधेय है। इसलिए उन गुणों की हम वंदना करते हैं। वहां वंदे तद्गुण लब्धे, व्यवहार हो गया वो।
वंदे तद्गुण लब्धे तो व्यवहार
क्या,
वंदे तद्गुण लब्धे बोलते हैं ना, व्यवहार से होगा क्या?
नहीं नहीं, बोलना व्यवहार ही है, आप बोलो। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, मुनि के जीवन में जो संयम आया है वो व्यवहार संयम है। पहले उस व्यवहार संयम को भी मंगल कहा है, है ना। जहां व्यवहार संयम रहेगा वहां व्यवहार सम्यक ज्ञान भी रहेगा, वहां व्यवहार सम्यक चारित्र भी रहेगा। व्यवहार यानी कि प्रवृत्ति, दस परिग्रहों को त्याग करने के बाद हमारी जो चेष्टाएं प्रवृत्तियां होती हैं, देव वंदना की, विहार की, ये सब संयममय है ना। बोलने की, बोलने में भी भाषा समिति संयम है, इसमें भी आहार लेने में भी समिति है, एषणा समिति संयममय है। सभी दोषों को टाल करके लेने का पूरा श्रद्धा के साथ कार्य चल रहा है, तो संयम। आहार लेने में संयम, बोलने में संयम, देखने में संयम, चलने में संयम, सब जगह संयम जीवित है। किसी वस्तु को रखने में संयम, लेने में संयम, हाँ, मल मूत्र विसर्जन करते संयम, समय संयम, कि जीव की हानि ना हो, ऐसे प्रासुक जमीन पर, जीव रहित जमीन पर। तो मुनि का जीवन संयम संयम संयम, सब जगह संयम, इसलिए मंगल है वो। ये प्रवृत्ति रूप जो संयम है, यह जो प्रवृत्ति रूप संयम है, इसको व्यवहार मंगल कहा। और यह व्यवहार मंगल भी व्यवहार से वंदनीय है। निश्चय से तो निश्चय मंगल ही वंदनीय है, वीतरागता ही वंदनीय है। जैन धर्म वीतराग धर्म है, सराग धर्म है क्या? तो मुनि भी समझते इस चीज को, मैं व्यवहार मंगल में हूं, व्यवहार मोक्ष मार्ग पर हूं, और यह व्यवहार मोक्ष मार्ग सराग रूप ही होता है। ये राग पना उसमें उपादेय नहीं है, राग राग ही है, रत्नत्रय रत्नत्रय उपादेय है। तो इस व्यवहार रत्नत्रय में जो राग प्रविष्ट हुआ है, उस राग को बाहर करना ही चाहते हैं। वो कहते हैं कि जैन धर्म में वीतरागता ही वंदनीय है, वीतरागता ही पूजनीय है, वीतरागता ही ओरिजिनल धर्म है, वीतरागता ही ओरिजिनल गुण है, निर्दोष गुण। जिन रत्नत्रय गुण के साथ राग आच्छादित हुआ हो, प्रशस्त राग, प्रशस्त राग है, अब प्रशस्त राग तो आ नहीं सकता मुनि का। प्रशस्त राग, मैं जीवों की रक्षा करूं, इतना भाव आते ही हमारा संयम राग से रंजित हो गया। ये व्यवहार संयम राग से रंजित हो गया। मैं उपदेश दूं, ये अनुराग है, इस अनुराग के कारण से मेरा संयम व्यवहार में पड़ गया, राग में पड़ गया, और राग से रंजित है इसलिए इसको व्यवहार कहा जाता है। जो गुण राग से रंजित हो गया वो व्यवहार धर्म, व्यवहार रत्नत्रय, व्यवहार मोक्ष मार्ग। और उस राग को रोकेंगे तो गुण ऊपर उठेंगे, तो ये प्योर है, प्योर आत्मा के गुण, निश्चय सम्यक, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र। निश्चय सम्यक चारित्र को संयम कहते हैं, और ये निश्चय सम्यक चारित्र इसमें अभेदपना आ गया। निश्चय में तीनों अभेद होते हैं, अभेद रूप होते हैं, भेद भिन्नता नहीं रहती, तीनों की एकता। सम्यक दर्शन अलग है, ज्ञान अलग है, चारित्र अलग नहीं है, ये तीनों एक में एक आचरण है। यानी शुद्धात्मा में स्थित जो अवस्था है उसमें इसमें सम्यक दर्शन ये है, ज्ञान ये है, चारित्र ऐसा भेद नहीं। वहां त्रिरूप व्यवहार धर्म सप्तम गुण स्थान में जाकर के एक रूप हो गया। जब रस्सी को बनाया जाता है तो उसमें तीन तुग्गियां होती हैं। अगला व्यक्ति जो रस्सी बनाने के लिए बैठा है वो उनके पास तीनों रस्सियां वहां पर बंधी हुई होती हैं, और वो ऐसा घुमाता है। देखा है कभी रस्सी बनाते हुए व्यक्ति को? एक व्यक्ति वहां पकड़े रहता है तीनों रस्सियों को, और ये जो बना रहा है वो तीनों रस्सी इनके यहाँ ज्वाइंट रहते हैं, और वो ऐसा घुमाता रहता है वहां वहां घुमाता रहता है तीनों रस्सियों को, तीन लोग घुमाते रहते हैं, और यहां वो क्या करता है, पकड़े रहता है, उन तीनों को एक बना देता है, वो एक बनता जाता है और वो तीनों मिलकर के एक बनते रहते हैं, ऐसे रस्सी बनती जाती है। तो निश्चय मोक्ष मार्ग का जन्म उन भेद रत्न त्रय का जहां समागम एक रूप होता है वहां से निश्चय। ऐसा उदाहरण है। इसके लिए एक उदाहरण और दे सकते हैं, जैसे आप लोग शरबत बनाते हैं। शरबत का क्या अर्थ है? शरबत किसको कहे, किस वस्तु का नाम शरबत? जिस वस्तु के अंदर तीन चीजें मिली हो, जिसमें पानी भी हो, शक्कर भी हो और नींबू का रस भी हो, इसको हम क्या नाम देंगे? शरबत। ये तीनों वस्तुओं का मिश्रण का नाम शरबत। अब वो शरबत बन गया, शरबत बनने के बाद उसमें शक्कर को ढूंढ सकते हैं? नींबू के रस को ढूंढ सकते हैं अलग से? नहीं। और शक्कर से और नींबू से रहित पानी को ढूंढ सकते हैं? नहीं। जब आप पानी को देखने लग जाओगे तो वो दोनों तीनों दिखेंगे और एक में एक रूप दिखेंगे, उसको भी अलग से देख नहीं सकोगे पानी को। हाँ, अच्छा, अलग अलग स्वाद ले सकते हो, अलग अलग उनका स्वाद भी नहीं ले सकते। तो स्वाद किस टाइप का आएगा? तीनों के मिलन का, मिश्रण का ही स्वाद आएगा। तो शुद्ध उपयोग में यानी आत्मानुभूति के काल में तीनों के मिश्रण का स्वाद आता है। तीनों के मिश्रण का स्वाद आता है। और यह शुद्धात्मानुभूति चौथे में कैसे आएगा? चौथे में तो दो ही हैं रत्न, नींबू और शक्कर है। नहीं नहीं, पानी और शक्कर है, सम्यक ज्ञान शक्कर है, ज्ञान मीठा रहता है। और सम्यक दर्शन वो तो फाउंडेशन, मूल है, वो तो दंशन मूलो धम्मो, वो तो मूल है। शरबत का मूल क्या है? जो पीने योग्य है। शक्कर तो खाने योग्य है, नींबू का रस भी खाने योग्य है, पीने योग्य नहीं है। वो थोड़ा चाट सकते हैं, घट घट पी नहीं सकते उसको, और उसकी मात्रा भी कम होती है। शक्कर है खाने योग्य है, नींबू है खाने योग्य है, पर पीने योग्य क्या है? पानी। और पीने योग्य उस वस्तु में अगर दो अन्य वस्तुओं का मिश्रण हो जाए तो अमृत बन जाता है, शरबत कहलाता है। तो चौथे गुण स्थान में श्रावक क्या करता है? पानी भी है और शक्कर भी है। पानी वैसे मीठा ही है, कुएं का पानी, बरसात का पानी, ओरिजिनल पानी मीठा ही है, लेकिन और मीठा चाहिए हो तो जरा शक्कर डाल करके मीठा बना लो और पी लो, पर आपकी प्यास नहीं बुझेगी। उसमें जब तक नींबू का रस नहीं पड़ेगा प्यास नहीं बुझेगी। यानी वो जो काम होना चाहिए पेट में जाकर वो नहीं होगा। तो चौथे गुणस्थान में दो से आत्मानुभूति होगी क्या? चौथे गुणस्थान में शरबत बन सकता है क्या? क्योंकि वहां पर दो ही रत्न हैं, और इन दोनों रत्नों को मंगल नहीं कहा। क्या कहा है? अमंगल कहा है कि नहीं? क्यों? तो मंगल कहा है ये कहो फिर। अमंगल भी नहीं कहा और मंगल भी नहीं कहा तो क्या कहा है फिर? क्या कहा है? प्रश्न तो उठेगा ना, दोनों रत्नों को क्या कहा? मंगल तो नहीं कहा। मंगल क्यों नहीं कहा? संयम के मिलन होने पर ही मंगल है। मंगल यानि शरबत, और उस शरबत के रूप को धारण कराने के लिए एक वस्तु और लानी पड़ेगी, नींबू को, संयम को उसमें निचोड़नी पड़ेगी। शक्कर तो पहले डला हुआ है, पानी भी है, पर थोड़ा सा चारित्र की खटाई और मिलाएंगे तो शरबत बन जाएगा। तो उस समय आत्मानुभूति होगी। हम कहते हैं चौथे गुणस्थान मत छोड़ो, पर संयम तो धारण करो, मत छोड़ो चौथे गुणस्थान। पर यदि आत्मानुभूति ही चाहते हैं तो संयम तो लियो ना, शरबत बन जाएगा, पी लो, चौथे गुणस्थान में बैठ के पी लो, आनंद के साथ पी लो। हाँ, संयम तो धारण करो। आप नींबू को निचोड़े बिना स्वाद कैसे आएगा? आत्मानुभूति का मतलब बिल्कुल अमृत जैसा स्वाद, तो उसमें नींबू तो लेना ही पड़ेगा। तो चौथे गुणस्थान में ही रहो, हम मना नहीं कर रहे हैं। चौथे गुणस्थान में ही शुद्ध आत्मानुभूति चाहिए कि नहीं चाहिए? ठीक, हम देने के लिए तैयार हैं। तो संयम ले लो, वही आत्मानुभूति हो जाएगी। संयम से बचकर अगर करना चाहते हैं तो केवल पानी और शक्कर पियोगे। और यदि संयम लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर ले लोगे सब परिग्रह से दूर होकर के चौथे गुणस्थान में ही रह करके संयम ले लोगे तो आत्मानुभूति होगी ही होगी। पर आप चौथे में उस समय रहोगे या सप्तम में रहोगे क्या मालूम? चौथे में मिला लिया और जब पी रहे थे तो हम सप्तम में थे, ऐसा हो जाएगा। जाओगे ही सप्तम में, संयम अगर धारण हो गया तो चौथे में टिक ही नहीं सकते आप। आप जब पी रहे होते आत्मानुभूति को उस समय अपने आप में सप्तम गुणस्थान होगा ही होगा, वो चौथे में रह नहीं पाएंगे। क्योंकि जहां खटाई की भी अनुभूति आने लगी अपने शरबत में, तीनों का मिश्रण का अनुभव आने लगा, उसका नाम चौथा गुणस्थान नहीं है, उसका नाम सप्तम गुणस्थान। तो चौथे में रहकर पियोगे कैसे उसको जो शरबत बन गया है? जब पी रहे होते तब सप्तम ही होगा वो। तो तैयार करना चाहते हो तो तैयार करके रखो, कोई बात नहीं। चौथे में संयम वगैरह लेकर के तीनों को शरबत बना करके रखो,
तैयारी करके रखो।
हाँ, तैयारी करके रखो। पीते समय तो सप्तम में जाना ही पड़ेगा आपको। आप नहीं चाहते हो तो जाना पड़ेगा। क्योंकि देखो आत्मानुभूति के लिए उन्होंने क्या कहा, दो प्रकार के राग को छोड़ना पड़ता है। अशुभ राग को त्यागो। अशुभ राग क्या है? परिग्रहों के कारण से जो राग उत्पन्न होता है, 10 प्रकार के परिग्रह, वो राग भाव अशुभ राग भाव। और इसको परिग्रह को त्यागने के बाद अब जो राग होगा वो संयम के प्रति होगा। जीव दया, संयम, उपकार, ये प्रशस्त राग है, ये भी बाधक है आत्मानुभूति के लिए। तो इसको भी छोड़ो कहते हैं, तो व्यवहार है, इसमें प्रवृत्ति है, इसमें विकल्प है, इन विकल्पों में राग है, प्रशस्त राग है। अब प्रशस्त तो पहले ही तुमने छोड़ दिया, पर अभी तो प्रशस्त बच गया, तो इस विकल्प के काल में भी आत्मानुभूति नहीं होगी छठे गुण स्थान में। और सप्तम गुण स्थान में भी जहां शुभोपयोग है, प्रवृत्ति है, समितियां हैं, वहां पर भी नहीं होने वाला है। तो शुभोपयोग चौथे से लेकर सप्तम तक है, जो सविकल्प सप्तम गुण स्थान है वहां तक है, और निर्विकल्प आते ही फिर वो निर्विकल्प सप्तम गुण स्थान अलग से ही है। तो शुद्धात्मानुभूति करते समय हम चाहे तो हमको भी नहीं होगा कि छठे गुण स्थान में यही शरबत बना लो और यही बैठ के पी लो, मैं जब पीऊंगा तब सप्तम में ही रहूंगा, मैं यहां रह ही नहीं सकता। और जब नहीं पी रहा हूं, बना के रख रहा हूं केवल, तो मैं व्यवहार में रहूंगा। तो व्यवहार मोक्ष मार्ग का अर्थ तो भेद मोक्ष मार्ग, और निश्चय मोक्ष मार्ग का अर्थ अभेद मोक्ष मार्ग। अभेद मोक्ष मार्ग व्यवहार मोक्ष मार्ग का अर्थ यह है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों अलग अलग रखे हुए हैं, अभी मिला या नहीं, ये अलग अलग रखे हुए हैं और अलग अलग खा रहे हैं। कभी नींबू का रस टेस्ट ले रहे हैं, कभी शक्कर का, कभी सम्यक दर्शन का, तो यहां पर अलग अलग ही स्वाद आएगा। मिश्रण स्वाद जो आएगा वो सप्तम में, और हम इसलिए वो आत्मानुभूति मिले इस कारण व्यवहार मोक्ष मार्ग को क्या करते हैं, हम निश्चय बनाने की चेष्टा करते हैं। तो हम क्या करते हैं, पात्र लाते हैं, किस पात्र को सामायिक करने का समय आ गया, तो काल जो है उस समय हम अपनी तैयारी में जुट जाते हैं, तो उस समय में मन वचन काय को योग को स्टॉप कर लेते हैं, गुप्ती धारण कर लेते हैं, ये गुप्ती हमारी पात्र, हमारा पात्र हो गए। और अंदर जो व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों हैं, उन सब को लेकर के इस गुप्ती में डाल देते हैं, तो पात्र में शरबत तैयार हो गया। अब जब हमें आनंद आना शुरू होता है पीते समय, उसका नाम शुद्ध आत्मानुभूति, आत्मानुभूति, शुद्ध आत्मानुभूति। वहां राग है क्या? नहीं है। वहां न प्रशस्त राग है न अप्रशस्त राग है। तो शुद्धात्मानुभूति का अर्थ होता है वीतराग आत्मानुभूति, और वीतराग आत्मानुभूति का अर्थ होता है जहां प्रशस्त और अप्रशस्त रागादि विकल्प भावों का अभाव है, उसका नाम शुद्धात्मानुभूति। रागा बुद्धिपूर्वक रागादि भाव जो थे अप्रशस्त प्रशस्त, दीक्षा लेते समय तो अप्रशस्त को तो जीवन पर्यंत के लिए हमने त्याग दिया, पर जीवन पर्यंत के लिए हम प्रशस्त राग को त्याग नहीं सकते। क्या जीवन पर्यंत ध्यान करेंगे? संभव ही नहीं है। ध्यान भी करेंगे, प्रवृत्ति भी करेंगे, ध्यान भी करेंगे, प्रवृत्ति भी करेंगे, ये चलता ही रहेगा। तो जब जब प्रवृत्ति तब तक प्रशस्त राग, और जब जब निर्वृत्ति तब तक वितराग, जब जब निर्वृत्ति तब तब वीतराग, जब जब प्रवृत्ति तब तब प्रशस्त राग, ऐसा मुनि का जीवन होता है। तो मुनि को यह संभव नहीं है छठे गुणस्थान में और सप्तम गुणस्थान, जो प्रशस्त राग वाले गुणस्थान है ये दोनों, यहां पर भी बैठ करके हम शरबत पिए, संभव नहीं है। शरबत मिलन का नाम है तीनों के, और ये राग हमको तीनों को मिलने नहीं देता। राग बहुत खतरनाक है, ये प्रशस्त राग अलग अलग रखता है, नहीं मिलना नहीं, ये रागी है इसलिए नहीं मिलना। अलग अलग रहता है। ये तो ये भेद रत्न त्रय है ये। और जब राग को हटाते हैं तो ये आपस में मिल जाते हैं तीनों। जब आपस में मिलते हैं तो शरबत बनता है। जब शरबत बनता है तो मुनि महाराज गुप्ती को धारण कर लेते, पहले मन वचन काय को रोकते हैं। तो ये बर्तन है उनका, उस बर्तन में व्यवहार रत्नत्रय को मिला करके दो तीनों को डाल देते हैं तो शरबत बनता है। और जब वो पीते हैं उसका नाम आनंद, सुखानुभूति, अध्यात्म आत्मानुभूति परमार्थ की अनुभूति, इंद्रियातीत आत्मा की सुखानुभूति, उसका नाम है। ये शरबत दुर्लभ है, सबको नहीं मिलता है और दे भी नहीं सकते इसको। नहीं, हम देना चाहिए। हमको जो मिल गया है और हम जो आस्वादन उसका ले रहे हैं, आप भी जरा आधा गिलास पी लो। ऐसी देने की वस्तु नहीं है। आत्मानुभूति एक दूसरे को दी नहीं जा सकती।
कह सकते तो है।
हाँ, शरबत कैसे बनाना विधि बता सकते हम। ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा मिलाओ, फिर इसके बाद ऐसा करो, बैठ जाओ, पात्र को तैयार करो, गुप्ती को तैयार करो। संयम आने के बाद ही गुप्ती आती। देखो, एक भी ध्यान रखना है, अप्रशस्त राग से जैसे मुक्त हो गए, मुनि व्यवहार गुप्ती में आ जाता। इसको व्यवहार गुप्ती बोलते हैं। आत्मानुभूति के लिए कौन सी गुप्ती चाहिए? निश्चय गुप्ती चाहिए। व्यवहार गुप्ती में तो व्यवहार रत्नत्रय की ही अनुभूति रहेगी, व्यवहार धर्म की ही अनुभूति रहेगी। निश्चय गुप्ती में, निश्चय गुप्ती में निश्चय रत्नत्रय की अनुभूति होगी। निश्चय रत्नत्रय की अनुभूति का नाम आत्मानुभूति, शुद्ध आत्मानुभूति है। मोक्ष मार्ग कहेंगे, निश्चय मोक्ष मार्ग, मोक्ष नहीं कहेंगे, निश्चय मोक्ष मार्ग। दो प्रकार का मोक्ष मार्ग है, निश्चय मोक्ष मार्ग, व्यवहार मोक्ष मार्ग। ये कहां तक है? निश्चय मोक्ष मार्ग कहां तक है? व्यवहार मोक्ष मार्ग कहां तक है? गुणस्थानों में छठा सप्तम, हाँ, प्रवृत्ति में। और निश्चय मोक्ष मार्ग कहां से कहां तक है?
सप्तम से लेकर
कहां तक लगाओगे निश्चय मोक्ष मार्ग को? सप्तम से शुरू हो गए, सप्तम से शुरू हो गया, फिर कहां तक है वो ऊपर?
केवल ज्ञान प्राप्त होते
हैं, उसके बाद भी है, उसके बाद भी और है।
ये केवल बारहवें गुणस्थान तक है। किस संबंधी? जो केवल ज्ञान की उत्पत्ति में कारणीभूत निश्चय मोक्ष मार्ग है, निश्चय मोक्ष मार्ग है, वह बारहवीं तक है। केवल ज्ञान की उत्पत्ति में कारणीभूत निश्चय मोक्ष मार्ग जो होता है वो सातवें से बारहवें तक है।
भाव मोक्ष और त्रय मोक्ष की अपेक्षा से?
हाँ,
भाव मोक्ष, हाँ, वो सापेक्षा से
ठीक है ना? तो यहां भाव मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि रागादि भावों को अभाव करने के लिए, मोहनी कर्म को हटाने के लिए, और मोहनी कर्म के निमित्त से जो घाती कर्म ज्ञानावरण आदि आ रहे थे उनको भी निर्जरा करने के लिए, घाती कर्मों को, हमको निश्चय मोक्ष मार्ग की शरण आवश्यक होता है। तो निश्चय मोक्ष मार्ग जैसे हमने उसका शरण ले लिया तो ये यात्रा चलेगी सप्तम गुणस्थान से बारहवीं तक। तो इसके भीतर साधक क्या करता है? सातवें से लेकर दसवें तक तो मोहिनी कर्म का नाश करता। मोहिनी कर्म को ही नाश करने के लिए वो करता है, प्रयास करता है। फिर मोहिनी कर्म दसवें में क्षय को प्राप्त होता है, फिर डायरेक्ट कहाँ जाता है? बारहवें, बारहवें में जाता है, फिर ग्यारहवें में नहीं जाता, क्योंकि वो उपशम श्रेणी चढ़ेगा तो जाएगा, एक क्षपक श्रेणी से आया है, तो दसवें से सीधा बारहवें में गया। तो बारहवें में तो मोहिनी कर्म अगर नष्ट हो गया ना, नष्ट करने के अंतर मुहूर्त काल तक ही आप छद्मस्थ अवस्था में रहेंगे, इससे ज्यादा नहीं, सिर्फ छद्मस्थ अवस्था में अंतर मुहूर्त काल रह सकते हैं आप मोहिनी कर्म को अगर जीत लिया तो। और निश्चय मोक्ष मार्ग को मोहिनी कर्म को ही जीतने के लिए अपनाया जाता है, निश्चय मोक्ष मार्ग को। तो वह निश्चय मोक्ष मार्ग यानी अंतर मुहूर्त तक उस, वह भी अंतर मुहूर्त काल वाला ही है, देखो सातवें आठवें नौवें दसवें इन सभी गुणस्थानों को काल को मिलाओगे तो भी सब मिलकर के एक ही अंतर्मूर्त है, और वो छोटे छोटे अंतर्मूर्त हैं सब मिला करके भी अंतर्मूर्त है, और बारहवें गुणस्थान का काल भी अंतर्मूर्त है। तो जीव मोहिनी कर्म को कितने समय में नष्ट करता है ये पूछेंगे, तो निश्चय मोक्ष मार्ग प्राप्त करने के उपरांत वह केवल अंतर्मूर्त में ही नष्ट करता है, इससे ज्यादा काल लगता ही नहीं। तो फिर जीवन भर ये मुनि बनकर के क्या किया इनने? तो निश्चय मोक्ष मार्ग में ठहरने लायक योग्यता नहीं आई, यानी शुद्धात्मानुभूति रूप जो निश्चय मोक्ष मार्ग है, शरबत पीते हुए वहीं बैठना, शरबत अंतर्मुहूर्त तक निरंतर पिए, ये शक्ति ही नहीं थी, इसलिए छठे सप्तम में रहे। और जिस दिन सामायिक किया उस दिन वहां अंतर्मुहूर्त टिक ही नहीं पाए, नीचे आए, दूसरे दिन भी ऐसा हुआ, तीसरे दिन भी ऐसा हुआ, सामायिक तो रोज कर रहे हैं, केवल ज्ञान नहीं हो रहा है, वहां स्थिर नहीं हो पाते, नीचे आते हैं, तो ये जिंदगी भर चल सकता है। और किसी दिन ऐसा सामायिक जिस दिन बैठे थे और निश्चय मोक्ष मार्ग में तल्लीन हो गए, ध्यान में तल्लीन हो गए, और शरबत पीते पीते केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो गई, तो ऐसा भी एक दिन आता ही है। भरत चक्रवर्ती को अंतर्मुहूर्त में आया, बहुबली को एक साल लग गया, तो कहां अटक गए थे वो? वही तो कारण है, मोह में अटक गए, मेरा तेरा भाव गया ही नहीं, ये तेरा भाव रह गया, मेरा तो चला गया था, पर तेरा ऐसा भाव भी उतना ही डेंजर है जितना कि मेरा कहना डेंजर है। तो साल भर लगा, भरत चक्रवर्ती को आना पड़ा उनके पास कुछ कहने के लिए कि ये धरती, क्योंकि केवल ज्ञानी आदिनाथ भगवान ने जान लिया क्या चल रहा है मन में उनका, और ऐसा चल रहा है, और जाकर के ऐसा कहोगे तो उनको केवल ज्ञान हो जाएगा। तो भरत चक्रवर्ती दौड़े, ये मेरी धरती की वजह से ऐसा उनको हो रहा है, तो हम जाकर के संबोधते हैं, जाकर के उस मुनि महाराज जो ध्यानस्थ थे उनको नमन किया, उनसे कहा ये धरती न तो मेरी है न किसी की हो सकती है, ये किसी की भी नहीं और मेरी भी नहीं, धरती धरती की है, और व्यक्ति आत्मा है, आत्मा आत्मा की होती है, आत्मा का मेरा तेरा ये विकल्प न रहना ही ये मुनि अवस्था है, ये धरती किसी की नहीं, ऐसा कुछ संबोधा तो सही उन्होंने, और ध्यान में खड़े थे तो सुने, खड़े खड़े ही सुना भी होगा, और सुनते ही उनको अंतर मुहूर्त के अंदर सब विकल्प दूर हो गए, और दूर होती ही वो अंतर मुहूर्त ही लगा, उसी वक्त केवल ज्ञान हो गया, वो सामने थे और वो ये केवल ज्ञान कर लिया, वो प्राप्त कर लिया। तो टाइम थोड़ी लगता है, बात समझ में नहीं आई तो साल भर भी लग सकता है, और बात समझ में आ गई और विकल्प दूर हो गया अंतर मुहूर्त भी लग सकता है। केवल ज्ञान इतना पास है, हमारे पास है, पर हम ही विकल्प नहीं छोड़ना चाहते तो कैसे आएगा वो? चाहिए उसके साथ वज्रषभ नारासनन चाहिए। हाँ, वज्रषभ नारासनन जिसको नहीं है ऐसे छह सनंधारी सभी मुनियों को शुद्धोपयोग का लाभ तो होता है, जो सप्तम गुणस्थान संबंधी है वो तो होता है, और आदि के जो तीन सनन है, पहला दूसरा तीसरा, पहले को तो छोड़ दो वो तो मोक्ष जा सकते हैं, दूसरा और तीसरा ये दो सनन, इनको ग्यारहवें गुणस्थान तक जाकर प्रत्येक गुणस्थान के शुद्धोपयोग का अनुभव करके नीचे आ सकते हैं, श्रेणी की अनुभूति लेकर के आ सकते हैं। कौन कौन से सनन वाले? दूसरा और तीसरा। पर चौथा सनन वाले, पंचम सनन वाले और छठे सनन वाले, ये सप्तम गुणस्थान के मात्र शुद्धोपयोग को अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि इनको श्रेणी चढ़ने की क्षमता नहीं रहती। अंतिम तीन सनन वाले श्रेणी नहीं चढ़ते। तो ये दिगंबर दीक्षा लेते हैं क्या? नहीं, अवश्य लेते हैं। मुनि दीक्षा लेना संभव है क्या? नहीं है। छठे सनन वाली भी सप्तम गुणस्थान तक जा सकते हैं, शुद्धात्मानुभूति का अनुभव भी लेकर के आ सकते हैं सप्तम गुणस्थान वाला। तो सप्तम गुणस्थान में जगन्य शुद्धोपयोग है, और बारहवें गुणस्थान में वही जगन्य वाला बढ़ता 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 बारहवें में उत्कृष्ट होता। हाँ, उसका मिठास बढ़ता है, उसका सुख बढ़ता है, आनंद बढ़ता है। जगन्य से उत्कृष्ट का मतलब क्या? उसमें मिठास बढ़ता जाता है, सुखानुभूति बढ़ती जाती है, विशुद्धि बढ़ती जाती है। विशुद्धि बढ़ने से ही सुखानुभूति बढ़ती है, ऐसा। टाइम पूरा हो गया, आप लोग शुद्ध क्यों थे? हमने विधि बता दी, अब आप अपना बना लो और पी लो, और चौथे में पी लोगे ना, बहुत अच्छी बात है। रेडी करके रख सकते हो, जब पियोगे तुम वहीं रहोगे, ये तो निश्चित बात है, निसर्ग नियम है, पीने वाला वहीं रहता है।